शेर की दुनिया।
मित्रों, कार्यक्रम शेर की दुनिया की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं जहरा जैदी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। पिछले कार्यक्रमों में हमने आपको फारसी की सबसे विख्यात किताबों में से एक शाहनामे के रचयिता हकीम अबुल कासिम फिरदौसी और उनके काल की परिस्थितियों से अवगत कराया था। आज हम आपको ये बताएंगे कि फिरदौसी की ये महान कलाकृति किस प्रकार तैयार हुई। आशा है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा।
वर्ष 387 हिजरी बराबर 997 ईस्वी में सामनी सरकार का पतन हो गया और गजनी के तुर्कों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि सामानी शासन के पतन की वजह सामानियों के अधीन क्षेत्रों, विशेषकर राजधानी बुखारा की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति से अब्बासी शासकों की अप्रसन्नता थी। सामान्य शासकों के अधीन क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहा करते थे, जिनमें अधिक संख्या मुसलमानों की थी।
ईरान के मुसलमान जहां अपनी इस्लामी आस्थाओं में ठोस थे, वहीं अपने ईरानी होने पर भी बल देते थे। ईरान में शिया मत की विभिन्न शाखाएं प्रचलित हो गई थीं, लेकिन उनके बीच इस्माइली मत के मानने वाले अधिक थे। इस मत ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों और सामानी दरबार में भी पैठ बना ली थी। दूसरी ओर अब्बासी शासक काराखानी तुर्कों और बगदाद के धर्मशास्त्रियों को सामानियों के विरुद्ध उकसा रहे थे और परिणाम स्वरूप वर्ष 389 हिजरी में ईरान के सामानी शासन का अंत हो गया।
गजनवी शासन के आरंभ में ईरानियों ने, जिन्हें देश की स्थिति की बेहतरी की अपेक्षा थी, महमूद गजनवी का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि वो ईरान में एकजुट और सशक्त सरकार गठित करेगा। फिरदौसी ने शाहनामे के कुछ शेरों में इस विषय का उल्लेख किया है। उन्होंने महमूद गजनवी के सत्ता में आने और ईरान के लोगों की समस्त आशाओं का वर्णन किया है।
तो दोस्तों, आइए अब अल्लामा इकबाल के कुछ शेर सुनते हैं।
तो फरमूदी रहे बतहा गिरफ्ते बगर ना जुस तुम्हारा मंजिल ही नीस्त। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद,
धनी धनी बगम, धनी धनी बगम रे सफा,
या मोहम्मद।
महमूद गजनवी अपने आप को ईरान की संस्कृति और परंपराओं का पक्षधर दिखाता था और ईरान से प्रेम का दावा करता था। उसका कहना था कि वो ईरान के अंतिम सासानी शासक यजदगिर्द तृतीय के वंश से है। उसने अपने शासन के आरंभ में ये प्रकट करने की कोशिश की कि वो सामानी सरकार की नीतियों और शासन शैली को जारी रखेगा।
महमूद गजनवी ने अपने शासन के आरंभ में अपने सिंहासन को मजबूत बनाने के लिए लोगों की इच्छाओं पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि उसने इसके लिए ईरान से प्रेम करने वाले अहम मंत्रियों को इस्तेमाल किया। वो ज्ञान व साहित्य से जुड़े लोगों के समर्थन का दम भरता था और उसके गद्य प्रेम और कवियों की मदद के चर्चे हर एक तक पहुँच गए। विदित रूप से इसी समय फिरदौसी ने शाहनामे का दूसरा संकलन पूरा किया और ये किताब संपूर्ण हो गई थी। अतः उन्होंने फैसला किया कि शाहनामे को महमूद गजनवी के समक्ष पेश किया जाए।
शासक शायरों, साहित्यकारों और कलाकारों का भरपूर प्रोत्साहन करते थे। बहुत से शासक खुद भी शायर हुआ करते थे, जिनमें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का नाम उल्लेखनीय है। उनकी ये गजल किसने नहीं पढ़ी या सुनी होगी, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उनकी इस गजल का मकता तो ऐसा लगता है कि उनकी भविष्यवाणी थी जो 100% सही सिद्ध हुई, और उन्हें परदेश में मौत आई और वे परदेश में ही दफन भी हुए। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में।
जी बिल्कुल। तो दोस्तों आइए अब अल्लामा इकबाल के कुछ शेर सुनते हैं।
या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद,
मानिए हरफम कुनी तहकीक अगर, बिंगरी बादीदाए सिद्दीक अगर, कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी, अज खुदा महबूब तर गर्दद नबी।
या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद
फिरदौसी के कुछ शेरों के अनुसार शाहनामे का दूसरा संकलन कवि की आयु 71 साल होने पर पूरा हुआ। शाहनामा 7 खंडों में महमूद गजनवी को पेश किया गया, लेकिन फिरदौसी और उनकी इस महान कलाकृति को सुल्तान की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि महमूद गजनवी के निकटवर्ती लोगों, विशेषकर दरबार के शायरों ने फिरदौसी के खिलाफ उसके कान फेर दिए थे, जिसके कारण उसने उन्हें महत्व नहीं दिया।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महमूद गजनवी के दरबार के शायरों को लगने लगा था कि अगर फिरदौसी के शेरों को सुल्तान ने महत्व दिया तो उनका स्थान खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए वे फिरदौसी और शाहनामे की बुराई करने लगे, जिसके चलते महमूद गजनवी और फिरदौसी के बीच मतभेद पैदा हो गए। कुछ अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि महमूद गजनवी और फिरदौसी का वैचारिक व आस्था संबंधी अंतर दोनों के बीच मतभेद का कारण बना।
गजनवी काल की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों की गहन समीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि फिरदौसी और शाहनामे की अनदेखी का कारण सुल्तान महमूद गजनवी की मूल नीति में परिवर्तन था। शाहनामा उस समय गजनी के दरबार में पहुंचा जब वहां अरबी भाषा की ओर रुझान बहुत अधिक प्रचलित हो चुका था और महमूद गजनवी अब्बासी शासन का आँख बंद करके अनुसरण करता था। इन परिस्थितियों में अगर वो शाहनामे को बहुत महत्व देता और उसे कहने वाले यानी फिरदौसी पर कृपा दृष्टि डालता तो आश्चर्य की बात होती।
शाहनामे का संदेश ईरान की महानता व स्वाधीनता की बहाली है, जिसका अर्थ ये होता कि वो अब्बासी शासन के अधीन क्षेत्रों से अलग हो जाए, और महमूद गजनवी इस प्रकार की काव्य रचना को किस प्रकार स्वीकार कर सकता था। इतिहास की किताबों में वर्णित है कि महमूद गजनवी को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिरदौसी इस संसार को विदा कह चुके थे।
उर्दू के भी बहुत से शायर हैं जिन्हें शासकों और लोगों की तरफ से अपने कलाम को न सराहे जाने पर तकलीफ रही है, और उन्होंने अपनी इसी तकलीफ को अलग अलग अंदाज में पेश किया है, कभी हंसी मजाक में, कभी इशारे इशारे में, और कभी खुलकर। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का پشیما ہونا.
جی
اسی طرح کا ایک اور شعر ہے کہ میرے بعد قتل سے توبہ آخری تیر تھا کمان میں کیا. اور فراز سلطان پوری ایک شعر میں کہتے ہیں پشیما ایک مدت تک رہا ہے کوئی در سے مجھے اپنے اٹھا کے.
واہ.
مفتی آزردہ لکھتے ہیں فلک نے بھی سیکھے ہیں تیرے سے طور کہ اپنے کیے سے پشیما نہیں.
تو یہاں پر تیرے سے کا مطلب ہے تجھ سے.
ہاں
جی پرانے شاعر ہیں اس لیے.
جی جمیل الدین علی نے کہا ہے خاموشی میری کہیں اور پشیما نہ کرے, خاموشی میری کہیں اور پشیما نہ کرے, تم اگر ہو بھی تو خلوت میں پشیما ہونا.